Welcome to First Post Masterclass, our brand new podcast series where elite athletes break down their craft for you. My name is Adi Nair, and joining me in this episode is Amrinder Singh. You know Amrinder from his exploits between the sticks for Mumbai City FC in the ISL, as well as his stint at Bengaluru FC. And in this episode, we will be discussing the art of goalkeeping.
So, Amrinder, सबसे पहले आप अभी कैसे हो इस मुश्किल टाइम में?
मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, फैमिली के साथ हूँ, घर पे हूँ और अपनी फिटनेस को मेंटेन कर रहा हूँ कि जितना भी फिट रह सके।
अच्छा, तो हमने सोचा था कि आज गोलकीपिंग के बारे में बात करेंगे। तो काफी लोग आपके बारे में ये जानते नहीं, पर गोलकीपिंग के पहले आप स्ट्राइकर थे, तो आपने गोलकीपिंग जब शुरू की तो सबसे मुश्किल चीज क्या लगी आपको?
उस टाइम पे जब मुझे लग रहा है मैं 14-15 साल का था जब मैंने गोलकीपिंग स्टार्ट की, क्योंकि हम लोग अंडर आई थिंक 17 की टीम थी, तो उसमें मैं स्ट्राइकर खेलता था। तो वहां पे मेरे दिमाग में उस टाइम पे एक ही बात थी कि मुझे लाइक कहीं भी खेलना है लेकिन बाहर नहीं बैठना है, कोई भी पोजीशन हो मुझे जस्ट जब भी मैच स्टार्ट होता है तो प्लेइंग 11 में रहना है। तो उस टाइम पे तो फर्स्ट तो मेरे दिमाग में यही बात थी कि मुझे लाइक प्लेइंग 11 में रहना है, और उसके बाद जो गोलकीपर का ट्रेनिंग है, जब आप स्ट्राइकर की ट्रेनिंग करते हो तो डायरेक्ट गोलकीपर की ट्रेनिंग में जाते हो तो सबसे डिफिकल्ट होता है जो गोलकीपर, मुझे लग रहा है कि सब फील्ड पे सबसे डिफिकल्ट होती है जो गोलकीपिंग की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डाइविंग एंड क्रॉसिंग, छोटे छोटे डाइविंग, छोटे छोटे बॉल ग्रिप, ये थोड़े डिफिकल्ट थे मेरे लिए और अलग भी थे।
और आप जब सीख रहे थे तभी आप किन गोलकीपर्स को देख के सीख रहे थे, मतलब टेक्निकल एबिलिटी में?
जब मैं ऐसे स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं था। जब मैंने धीरे धीरे अपने आप को ऐसे गोल कीपिंग की ट्रेनिंग करते करते फिर मैंने देखना स्टार्ट किया थोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है उस टाइम पे ज्यादा इंटरनेट भी नहीं यूज करते थे लोग। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया देखना ऑनलाइन फुटबॉल पे या यूट्यूब पे जाके सर्च किया, तो मैंने बुफन को ज्यादा फॉलो किया, तो उसकी जो ट्रेनिंग थी कभी कभी उसकी वीडियो देखता था कि वो कैसे करता है, जो गेम में वो सेव करता है उसको देखता था। और अभी भी मैं ऐसे ये सब वीडियो देखता रहता हूँ। अभी एलिसन है तो अभी बहुत सारे गोलकीपर हैं जिनकी हम, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हम किसी से भी एक, मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जाने को किसी को फॉलो करके उसकी चीजें सीखूं। कोई भी गोलकीपर होता है मेरे सामने, चाहे वो एलिसन हो, चाहे एडरसन हो, या कोई भी हो, बुफन हो, कोई भी, मैं जो भी लाइक वर्ल्ड के बेस्ट गोलकीपर है मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। किसी से भी कोई भी लाइक चाहे वो आईएसएल में हो, यंग गोलकीपर हो, हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं जो भी चीजें उनकी होती है देख के मैं वो लेने की ट्राई करता हूँ बहुत जल्दी।
ओके, तो फुटबॉलर्स जनरली दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से गिने जाते हैं, पर जैसे बाकी 10 प्लेयर्स से लंबे डिस्टेंसेस भागना या स्प्रिंट करना वो गोलकीपर का काम नहीं है, तो आप किस टाइप की फिटनेस ट्रेनिंग पर फोकस करते हो जनरली?
क्योंकि गोलकीपिंग की ज्यादा ट्रेनिंग भी होती है कि छोटे छोटे बॉल डाइविंग के लिए, और छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है क्योंकि उसका काम एक बॉक्स में होता है, पोस्ट के सामने होता है, तो ज्यादा उसके डिसीजन मेकिंग होते हैं कि उसको एक तो रहता है कि सिंपली जो एक पॉइंट है कि हमें गोलकीपर को बहुत काम रहना पड़ता है, क्योंकि काम रहना पड़ता है और रिफ्लेक्टिंग है और एक एजिलिटी है, कवरिंग है कि कैसे अपने गोल पोस्ट को कवर करना है। और मुझे लग रहा है जो एक डिफिकल्ट पॉइंट है वो होगा कि हमेशा गोलकीपर को काम रहना चाहिए, वो चीज हम ट्रेनिंग से नहीं ले सकते, वो अपने हमारे डिसीजन होते हैं कि हमें ट्रेनिंग से देख के, मतलब वो सिचुएशन से कैसे हमें अपने आप को काम रखना है।
और जैसे फुटबॉल में काफी लंबा स्पोर्ट है, 90 मिनट का स्पोर्ट है, और हर टाइम आपके एरिया में बॉल तो नहीं रहेगा, तो आप ऐसे अलर्ट कैसे रहते हो?
वो एक ऐसा है कि अगर आप आपके सामने कहीं भी बॉल चल रहा है तो आपकी एक ड्यूटी होती है कि आप अपनी टीम को हमेशा गाइड करते रहो, क्योंकि गोलकीपर के पास इतना टाइम होता है कि वो अपनी, क्योंकि सबसे मेन बात गोलकीपर के अंदर मुझे लग रहा है ये भी होनी चाहिए कि वो गेंद रीड अच्छे से कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पूरी फील्ड ऑलमोस्ट दिखती है कि क्या चल रहा है फील्ड पे, अपना प्लेयर कौन क्या कर रहा है, उसकी ड्यूटी क्या है, वो गोलकीपर को हमेशा पता होनी चाहिए मुझे लग रहा है। और जो कम्युनिकेशन है वो उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जितना शॉर्ट वर्ड में मैं किसी को भी बता सकूं कि उसकी ड्यूटी क्या है उस टाइम पे, क्योंकि मैं गोलकीपर अच्छे से गेम को रीड कर सकता है पीछे से। तो मुझे लग रहा है कि यही एक रीजन होते हैं कि गोलकीपर को सारा टाइम, मुझे लग रहा है कि गोलकीपर ज्यादा मेंटली इसीलिए टायर्ड होते हैं मैच के बाद, क्योंकि वो सारा 90 मिनट तक यही काम करते हैं कि ऑलमोस्ट जो उसके आगे 10 प्लेयर खेल रहे हैं और 11 उनकी टीम के प्लेयर खेल रहे हैं, वो ट्राई करता है कि उनको रीड करने के लिए कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो अपनी टीम को गाइड कर सके अच्छे से कम्युनिकेशन करके। जितना क्लीन हम कम्युनिकेशन करेंगे, क्लीन एंड शॉर्ट, उतना हमारी टीम के लिए अच्छा होता है। तो वो सब चीजें कि कितनी जल्दी गेंद रीड करके, कितनी जल्दी अपनी प्लेयर्स को बता के उसकी पोजीशन अगर किसी गलत है, तो मुझे लग रहा है ये चीजें हमें गेम में रखती है।
जैसे आपने मेंटल प्रेशर के बारे में बोला था, वैसे अमेरिकन गोलकीपर ब्रैड फील्ड का एक काफी फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा है कि गोलकीपर के लिए छुपने की कोई जगह नहीं होती है। तो आपको
जी।
ये सही लगता है कि गोलकीपर पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है आउटफील्ड प्लेयर से?
ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि फुटबॉल में अगर देखा जाए तो हर प्लेयर पे एक डिफरेंट टाइप का प्रेशर रहता है। अगर देखो स्ट्राइकर के ऊपर भी प्रेशर है, गोलकीपर के ऊपर प्रेशर ऐसा होता है कि हमारे पीछे कोई भी हमें कवर करने वाला नहीं है, तो वो एक चीज का प्रेशर रहता है। तो मेन बात वहां पे क्या आ जाती है कि वो प्रेशर को हम लोग कैसे फेस करते हैं। तो अगर वो आप हमेशा ही वो चीज को देखो कि हमें वो चीजें प्रेशर में रख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे गोलकीपर बन पाओगे। हमें बस वो चीज, वो प्रेशर की वजह से वो चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि जो हमारा काम है, जो हम ट्रेनिंग में करते हैं, तो जस्ट जितना आप, मुझे लग रहा है कि गोलकीपिंग अगर आप चाहो तो उसको जितनी ज्यादा सिंपल बना सकते हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हमेशा कि जितनी आप उस चीज को कितनी ज्यादा सिंपल बना सकते हो और उस चीज को कितनी ज्यादा डिफिकल्ट बना सकते हो। अगर वो आपका पूरा माइंड सेट होता है उसके ऊपर, मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने माइंड माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, अगर आप, तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट 10 मिनट में या फर्स्ट मिनट में कोई भी मिस्टेक करते हो, ठीक है हम लोग इंसान है कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक 90 मिनट है कि उस चीज को कवर करने के लिए। अगर वो 90 मिनट हम लोग वही फर्स्ट मिस्टेक को सोच रहे हैं, तो वो एक गोलकीपर्स के लिए स्पेशली एक अच्छा सिग्नल नहीं है कि पूरे 90 मिनट हम लोग वो चीज का प्रेशर लेके गेम खेले। हमें वही एक मेंटली गेम होती है कि हम जो फर्स्ट मिनट में कोई भी मिस्टेक हुआ है उसको कितनी जल्दी हम लोग अपने दिमाग से निकाल के अपने गेम पे नॉर्मल फोकस कर रहे हैं, नॉर्मल अपना गेम खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये चीजें डिफिकल्ट होती हैं, और अगर हम लोग, कोई भी एडवाइस मैं देना चाहूंगा तो यही है कि जितनी ज्यादा ये चीज से जल्दी निकलें और अपने आप को हमेशा काम रखें, जो भी आपकी जॉब है उस पे।
गोलकीपर से गलतियां होती रहती है, पर आप पहले से अच्छे थे रिकवर करने में या आप अपने करियर में सीखे हो कि कैसे रिकवर करना चाहिए?
मुझे लग रहा है कि मैं, जो मेरा प्लस पॉइंट है, मुझे लग रहा है मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं कभी भी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, और चाहे मेरे सामने कितना भी बड़ा कोई प्लेयर हो या कोई भी अच्छा प्लेयर हो या कोई भी खराब प्लेयर हो, मैं कभी भी वो चीज को नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा ही, मेरे दिमाग में ये होता है कि मुझे मेरा काम क्या है। अगर मैं फर्स्ट मिनट में भी कोई गलती करता हूँ तो मेरे दिमाग पे वो गलती का कभी भी कुछ नहीं रहता है कि हाँ मेरा काम है, मैंने ट्राई किया करने के लिए, अपना 100% दिया, नहीं हुआ वो अलग बात है, ठीक है। अगर आपने कोई मिस्टेक भी किया तो मेरा सबसे पहले ये रिएक्शन होता है, अगर हम गोल कंप्लीट भी करते हैं तो मैं बॉल लेके अपनी टीम को सबसे पहले मोटिवेट करूँ कि कोई बात नहीं, अगर हमने कंप्लीट किया भी है तो हमें बस ये फोकस करना है अभी कि वो चीज को कैसे अभी आगे गोल स्कोर करना है या कैसे अपनी टीम को डिफेंस करना है कि हम लोग को आगे वाले पूरे गेम में अच्छा करे। तो मुझे लग रहा है यही चीजें मुझे इम्प्रूव करवाती हैं कि मैं कभी प्रेशर में नहीं रहता या कभी प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि मेरा फोकस सबसे ज्यादा मेन होता है कि मुझे क्या करना है। अगर कोई भी, क्योंकि एक बॉल, और बॉल मेरा काम है, वो बॉल को नेट में नहीं जाने देना, मेरी एक ड्यूटी होती है वहां पे कि मेरा काम क्या है गोल पोस्ट में। मैं हमेशा वो चीज को देखता हूँ कि मेरा काम क्या है बॉल के लिए। तो उसके सामने कोई भी हो, बॉल के साथ कोई भी हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं कभी भी पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरा काम पता है कि क्या करना है। अगर मैं वो काम अपना अच्छे से कर रहा हूँ तो
अच्छा
मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर ऐसे कोई प्रेशर नहीं करेगा।
तो जब आप वन ऑन वन सिचुएशंस में होते हो स्ट्राइकर के साथ, तो आप किस चीजों पे फोकस करते हो ताकि गोल ना होए?
मैं नॉर्मली अपना देखता हूँ कि जो हमारे कोच का प्लान है, और क्योंकि हर कोच का अलग अलग प्लान होता है, और जो आपको चीजें लाइक जो आप चीजें अच्छे से वर्क करते हो कि क्या सिचुएशन है कहाँ पे, क्योंकि एक फील्ड होती है, बॉक्स होते हैं हमारे, छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स होता है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है बॉल कहाँ पे है। मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि अपने फीट पे रहूं और स्ट्राइकर को कोई ऐसा सिग्नल ना दूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं हमेशा वेट करता हूं अपने फीट पे कि मैं स्ट्राइकर को डिसीजन लेने दूं कि वो क्या करना चाहता है। मैं उसके हिसाब से हमेशा, मुझे लग रहा है, डिसीजन लेने का ट्राई करता हूं, और मुझे लग रहा है ये एक सही बात भी है, हमेशा स्ट्राइकर को डिसीजन लेने का चांस देना चाहिए, क्योंकि बॉल उसके पास है, उसके ऊपर मुझे लग रहा है और भी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अगर वो गोलकीपर को 1v1 फेस कर रहा है, तो अगर हम लोग अपना डिसीजन लेके एक साइड में जा उसको कुछ एक मोमेंट पे ट्राई कर रहे हैं खींचने के लिए, मुझे लग रहा है वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है उसके लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुके हैं अपने दिमाग में, तो एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जितना अपने फीट पे रह सकूं और वेट करूं कि स्ट्राइकर क्या करने वाला है, उसके हिसाब से रिएक्ट करूं।
और गोलकीपिंग काफी फिजिकल हो सकता है कभी कभी, स्पेशली 1v1 सिचुएशंस में टकराव होते हैं स्ट्राइकर से।
देखिए,
तो आप खुद को कैसे ट्रेन करते हो कि इसको इसकी तरफ भागे या अवॉइड नहीं करे टकराव को?
मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे हमारे दिमाग में या ये चल रहा होता है, किसी के भी दिमाग में ये चल रहा होता होगा कि 1v1 सिचुएशन है, या किसी को हर्ट होगा या किसी को कुछ भी होगा। जो जो चीजें हम लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं कि हमें बॉल को कैसे सेव करना है वो सिचुएशन पे, हमें एक स्पेशली मेन बात है गोलकीपर के लिए कि हमें हमेशा ब्रेव रहना चाहिए। मुझे लग रहा है गोलकीपर ब्रेव होते भी हैं, और उस टाइम पे ऐसे कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे हम स्केर्ड हों। मुझे पता होता है कि कौन क्या ड्यूटी है मेरी, किस एक्शन से मैं बॉल सेव कर सकता हूँ, तो हम अपना ब्रेव रह के वो एक पोस्ट में खड़े रहते हैं। अगर जितना हम लोग अपना पोस्ट में ब्रेव रहेंगे, उतना हमारे लिए एक इजी भी रहेगा कि स्ट्राइकर के ऊपर प्रेशर है, और कितना ज्यादा हम लोग फिजिकली हैं वो भी एक स्ट्राइकर के ऊपर प्रेशर रहता है कि कुछ तो हरकत होने वाली है।
और आप जब सेव करते हो तो आपका स्ट्रांग हैंड मैटर करता है क्या, कि आप राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड? जैसे दोनों साइड पे आप दोनों हाथ से कर सकते हो सेव, या आप एक हैंड प्रेफर करते हो?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा गोलकीपर का कोई भी एक हैंड होता होगा, क्योंकि हमारी हम लोग अपना पूरी लाइफ तक ये ट्रेनिंग करते आते हैं, तो मुझे लग रहा है दोनों हैंड हमारे सेम ऑलमोस्ट सेव के लिए दोनों हाथ सेम हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि लेफ्ट हमारा और भी फ्रेश रहता है, क्योंकि नॉर्मली ज्यादा हम राइट यूज करते हैं ट्रेनिंग में, तो लेफ्ट एक फ्रेश रहता है, उसमें वो और भी ज्यादा पावर होती है, तो हमें बस वो यूज करनी आनी चाहिए कैसे। अगर हमारे लेफ्ट साइड में भी, मुझे लग रहा है वीक साइड में कह सकते हो कि जिसको आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो अगर उस साइड में भी मुझे लग रहा है बॉल आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक वीक साइड या कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग साइड, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लग रहा है गोलकीपर की दोनों साइड की स्ट्रॉन्ग रहती है, और हमें ये चीजें स्ट्रॉन्ग रखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा हाथों का काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीक या एक स्ट्रॉन्ग, ऐसे कुछ नहीं होता।
अच्छा। और आज के फुटबॉल में गोलकीपर्स से एक एक्सपेक्टेशन है कि उनकी पासिंग भी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो आप पासिंग पे कितना प्रैक्टिस करते हो कंपैरेटिवली?
ऑफकोर्स अगर आप अभी मॉडर्न फुटबॉल देखोगे वो पूरा ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है गोलकीपर का। जैसे लोग पहले देखते थे कि गोलकीपर का काम सिर्फ पास से होता है, बॉल सेव करना होता है। मुझे लग रहा है कि अभी जो फुटबॉल चल रहा है उसमें अगर देखा जाए तो गोलकीपर हमेशा एक ऐसा ऐसी पोजीशन बन चुकी है जो अटैक को स्टार्ट करने वाला है, अटैक को बनाने वाला है कि कैसे बॉल को अपने पैर में रखना है और कितने कॉन्फिडेंस से हमें हमेशा रहना चाहिए दोनों फीट से। मुझे लग रहा है कि अगर आपकी टीम आपके कोच का प्लान है कि हमें बॉल रखना ही है इसलिए, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग बॉल रख रहे हैं, हमारा आपकी टीम कीप द बॉल अपने पास ही रखना चाहती है, तो उसमें सबसे मेन रोल हो जाता है गोलकीपर का। क्योंकि गोलकीपर एक वहां पे ऐसी पोजीशन होती है कि जो सबको देख रहा है कि क्या चल रहा है, अगर गोलकीपर के पास प्रेशर में भी बॉल आता है तो उसके पास सोल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग होती है, पासेज होते हैं, छोटी छोटी ड्रिल्स होती है कि जितना जल्दी हम लोग रिसीव करके पास क्विकली कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि बॉल आने से पहले हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे प्लेयर्स हैं। अगर हम लोग प्रेशर में हैं तो बॉल रोकने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे बॉल देना है और कहाँ पे एक टीम प्लान बन जाता है कि अगर आप वहां पे नहीं भी देखो तो उसमें एक मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो राइट बैक लेफ्ट बैक जो भी डिफेंडर है उनका एक रोल होता है, उनका एक रोल होता है कि अगर गोलकीपर के पास यहाँ पे बॉल है तो उनकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो एक नॉर्मली सेट होता है। तो अगर वो सब चीजें नहीं होती पहले तो वो नॉर्मली सेट होता है कि हाँ अगर गोलकीपर के पास बॉल है तो सबकी पोजीशन उसको पता होता है कि कहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि एक ऑटोमेटिक बन जाता है कि जब आप लोग बॉल रखना चाहते हो हमेशा तो हर प्लेयर के पास जिसके पास बॉल है उसके पास दो तीन ऑप्शन होनी चाहिए। तो एक ये चीजें बन जाती है कि गोलकीपर को पता होना चाहिए कि कहाँ पे कि उसके राइट बैक की कहाँ पे उसके लेफ्ट बैक की पोजीशन होती है। और अगर आपके पास ये बॉल प्रेशर में भी आता है तो आपको उस सबसे पहले देखना चाहिए, बॉल रोकने से पहले देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे। तो मुझे लग रहा है ये सब चीजें अगर आप नोट करते हो, कितना जल्दी नोट करते हो, कितना जल्दी सीखते हो, कितना पहले देख लेते हो कि कहाँ पे खेलना है, तो ये सब चीजें इजी हो जाती है।
अच्छा, और इसमें आपका कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपके डिफेंडर्स से?
मुझे लग रहा है ये सबसे मेन बात है कि हम कितना कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये चीजें जितना मैं अपनी टीम से बात करूंगा कि वो एक सबसे एक मेन मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट थिंग्स है फुटबॉल में, कि जितना मैं अपनी टीम से बात करूंगा उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा, मैं भी गेम में बना रहूंगा, उतना मेरे डिफेंडर्स के लिए अच्छा है, उतना मेरे मिडफील्डर के लिए, पूरी टीम के लिए एक अच्छा सिग्नल होगा कि अगर हम लोग सबसे बात करते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि गोलकीपर का सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए कि वो कितनी जल्दी गेम को रीड करता है, कि अगर उनके पास बॉल है तो अपने प्लेयर्स की सिचुएशन क्या होनी चाहिए, कि क्या करने वाले हैं वो। अगर मैं वो कम्युनिकेशन करके उनको जितना कम बोल के जितना क्लियर शॉर्ट उनको बता सकूं कि उनको क्या करना है, तो वो मेरे एक ये सब चीजें सीखने वाली होती है कि जितना ज्यादा हम कम बोलें और जितना भी हो सकता है उनको क्लियर पता होना चाहिए कि गोलकीपर ने क्या बोला है, क्या करने के लिए बोला है। तो ये सब चीजें कम्युनिकेशन होता है कि वो सब चीजें इजी कर देती है मेरे लिए। इन दी एंड मेरे लिए वो चीजें इजी कर देती है। अगर मेरे डिफेंडर एक शेप में है, मिडफील्डर शेप में है, तो अगर मैं उनको बात करके शेप में कर लेता हूँ तो वो एक मेरे लिए इजी हो जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो मैं हमेशा फोकस में रहूंगा गेम में। तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही ये जरूरी चीज है कम्युनिकेशन गोलकीपर के लिए।
तो गोलकीपर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो सेट पीसेस में होता है। तो जब आप
जी
फ्री किक फेस कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वॉल सेट करने की, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, कितने लोग होने चाहिए उसमें, और आप खुद को कैसे पोजीशन करते हो फ्री किक के टाइम पे?
सबसे सबसे पहली बात होती है कि गेम रीड वो लोग क्या करने वाले हैं। और उससे पहले हमारा एक सबसे पहले होता है कि हमें जस्ट काम रहना है, मुझे पता होता है कि मेरा काम क्या है और सबसे पहले काम और उसके बाद अपने जो भी डिसीजन लेने हैं, किसको बॉल में रखना है, कितने प्लेयर बॉल में रखने हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे फ्री किक हो रही है। अगर बॉक्स के सामने, बिल्कुल सामने हो रही है फ्री किक, उसमें हम लोग तीन चार पांच भी पांच चार या पांच प्लेयर भी रख देते हैं कि हम लोग एक एंगल पूरा कवर कर सकें उनकी स्पोर्ट से। और उसके बाद मेरे ऊपर आती है कि मेरी ड्यूटी क्या है। अगर मैंने अपनी बॉल को जो सेट किया है वो एक फर्स्ट पोस्ट पे सेट किया है, तो उनको मैं उनसे बात करता हूँ, गोलकीपर, हाँ गोलकीपर को उनसे बात करनी चाहिए कि मैं भी करता हूँ कि उनकी अगर वो बॉल में खड़े हैं तो उनको कितना ब्रेक रहना है और स्मार्ट भी रहना है कि लाइक अगर वो जंप करते हैं वो नीचे से भी मार सकते हैं, कितना जंप करना है और कि बॉल का साइज कितना होता है, कितना जंप करना चाहिए हमें, और हमेशा टाइट रहना चाहिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि बीच से बॉल आ सके उनके। और उसके बाद मेरी जॉब होती है कि मैं सबसे जो पहले बॉल को देखूं कि बॉल कहाँ पे जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपना डिसीजन, मैंने पहले बोला 1v1 पे कि हमें अपना डिसीजन, कभी गोलकीपर अगर हुआ तो हमें अपना डिसीजन पहले नहीं लेना है, हमेशा अपने फीट पे खड़े रहना है, देखना है कि वो क्या करना चाहता है, कि कहाँ पे मारना चाहता है, तो उसके हिसाब से हमें अपना डिसीजन लेना है। अगर हम लोग अपना डिसीजन पहले ले रहे हैं तो वो हम एक स्ट्राइकर के लिए इजी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वही एक सारे हर किसी सिचुएशन में एंड में आके वही चीजें मैटर करती है कि आपका काम रहना, कम्युनिकेशन, आपके डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं एंड एंड में आके यही सब चीजें आप बोल सकते हो ना कि अगर फ्री किक है, कॉर्नर है, पेनल्टीज है, 1v1 सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, तो सबसे मेन की आपको कितना काम रहना है और आपका जो डिसीजन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्राइकर के ऊपर या जिसके पास बॉल है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमेशा।
अच्छा, पर जैसे आपने अभी बोला कि आपको रुकना पड़ता है स्ट्राइकर के डिसीजन के लिए, पर यूजली पेनल्टी के वक्त जब आप फेस कर रहे होते हैं तो आप काफी स्टडी करते हो पेनल्टी टेकर्स को, तो वो जो आपका इन्फॉर्मेशन है उससे आप कभी ऐसे डिसाइड करते हो कि शायद ये डायरेक्शन में ये मेरे सबसे अच्छी चांस है रुकाने की पेनल्टी, लाइक या आप हमेशा रुकते हो स्ट्राइकर के लिए?
पेनल्टीज पे एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है, मुझे लग रहा है कि वो डिपेंड करता है कौन से टाइम पे स्ट्राइकर पेनल्टी ले रहा है। आपने देखा होगा कि ज्यादा पेनल्टीज अभी हम लोग फेस नहीं करते हैं क्योंकि जो लीग सिस्टम में ज्यादा पेनल्टीज तो सेफ फेस नहीं किया जाता है ना, तो वो पेनल्टी जो गेम में ही कभी मिली या तो उसी को सिचुएशन, वही सिचुएशन में अभी ज्यादा फेस होती है, तो वो एक सिचुएशन होती है। मुझे लग रहा है कि जितना प्रेशर भी होता है, मुझे लग रहा है 90% प्रेशर होता है जो स्ट्राइकर पे के ऊपर रहता है, क्योंकि
हाँ
सारी गेम का प्रेशर, क्योंकि गोलकीपर के ऊपर मुझे नहीं लगता, हाँ रहता होगा 10% प्रेशर रहता होगा कि सेव करनी है पेनल्टी, अपनी टीम को सेव करना है। तो जो 90% प्रेशर मैं बोल सकता हूँ कि पेनल्टी से एक जो पेनल्टी टेकर है उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको उसके ऊपर प्रेशर है स्कोर करने के लिए कि कौन सी, मैंने बोला कि कौन सी सिचुएशन पे है, और सारा प्रेशर उसके ऊपर रहेगा। और फिर हमारी स्टडी की बात आती है कि हम लोग स्टडी करते हैं, हाँ जिसके साथ मैच होता है, हाँ, मुझे लग रहा है इन इन द वर्ल्ड सब गोलकीपर ये करते हैं कि मैच से पहले स्टडी करते हैं कि कौन पेनल्टी ले रहा है, कौन लेगा, किसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेन टीम में एक दो दो या तीन प्लेयर होते हैं जो पेनल्टी टेकर होते हैं गेम चलते के समय, तो हम लोग स्टडी करते हैं उसके बारे में कि वो क्या करता है पेनल्टीज पे, तो कि कैसे अगर मारता है तो क्या करता है, ये सब छोटी छोटी स्टडीज करके हम लोग जाते हैं। कभी कभी हाँ ठीक है वो चीज को फेस करना पड़ता है, उसके बाद हमें वही वहां पे रीडिंग की बात आ जाती है थोड़ी, क्योंकि पेनल्टीज एक ऐसी चीज है आपको तो अपना डिसीजन लेना है और आपको तो स्ट्राइकर को हमेशा जो पेनल्टी टेकर है उसको हमेशा एक फोर्स करना है कि वो ये एक साइड में जाए और उसके बाद आपका डिसीजन है, और आपको तो रीड करना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, कितना प्रेशर में है, कि वो क्या क्या कर सकता है उस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि गोलकीपर हाँ ठीक है थोड़ा पहले डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो एक गोलकीपर के लिए एक सिचुएशन होती है कि यहाँ पे अगर आप, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप ये साइड में आप जा रहे हो डाइव कर रहे हो, वो आप उसको लाइक उसको 100% कवर करना चाहिए। अगर ठीक है दूसरे साइड में गया तो गोलकीपर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि पूरा प्रेशर स्ट्राइकर के ऊपर है। स्ट्राइकर के लिए मुझे लग रहा है इजी भी वो एक तो बोल सकते हो कि जितना स्ट्राइकर को अगर कॉन्फिडेंस में रहता है। तो यही चीजें हैं कि अगर हम लोग फोकस करते हैं, उसको रीड करने की ट्राई करते हैं, पहले स्टडी करते हैं, तो उसको फोर्स करेंगे कि वो एक कौन सी साइड जाए, वो उसको रीड करके वो ही सब एक डिसीजन होते हैं। इन दी एंड लास्ट मोमेंट तक देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, रन कैसे कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें होती है वो टाइम पे जो आपको रीड करनी चाहिए वहां पे। तो उसके बाद आपका डिसीजन होता है कि कौन सी साइड जा रहे हो। अगर आप एक साइड जा रहे हो तो आपको अपना लाइक वो साइड 100% कवर करनी चाहिए।
और फाइनली सबसे शायद ट्रिकी जो सेट पीस है वो कॉर्नर होता है गोलकीपर के लिए, क्योंकि उसमें आपके पास शायद थोड़ा कम कंट्रोल रहता है, काफी सारे प्लेयर्स रहते हैं आपके और बॉल के बीच में। तो आप जब कॉर्नर फेस कर रहे होते हो तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि क्या करना है, शायद मैं लाइन पे रहूंगा या मैं बाहर जाके रिस्क लूंगा क्लेम करने का बॉल?
नहीं, मेरा एक ही होता है कि मेरे दिमाग में कि मैं वेट करता हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कॉर्नर होने से पहले उससे पहले मैं यही अपने आप को यही ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे भी किसी ने मार किया है, मुझे मेरे ऊपर भी कभी कभी देखा होगा आपने कि स्ट्राइकर गोलकीपर के सामने आके उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं वही उससे पहले कॉर्नर के लेने से पहले मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं अपना एरिया थोड़ा क्लियर रखूं कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मेरा एरिया, अगर मेरा बॉल है तो मुझे बाहर जाना है, तो मैं पहले सबसे मैं रखता हूं कि अपना एरिया जितना भी क्लीन रख सकूं, अपने स्ट्राइकर को अपने डिफेंडर्स को बोलता हूं कि कवर करने के लिए कि जितना भी ज्यादा आप कवर कर सकते हो उसको स्ट्राइकर को कि मुझे डिस्टर्ब ना करे। हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि फ्री रहने के लिए कि कोई भी मेरे ऊपर अगर मुझे कोई बात कर रहा है तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा डिसीजन लेना उस टाइम पे जो कॉर्नर की सिचुएशन होती है। मैं हमेशा ही वेट करता हूँ जब वो कभी भी कॉर्नर लेते हैं वेट, क्योंकि आप वहां पे इतना दूर बॉल नहीं जाएगा। अगर आपका बॉल है तो आप उसको हमेशा देख, मुझे लग रहा है अगर बॉल आपका है हमेशा वेट करके बॉल को देख के अगर आपका बॉल है तो ही निकलना चाहिए, नहीं तो आपको अपना काम करना चाहिए। अगर अपने डिफेंडर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो लोग क्लियर करेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हमें अनटचरी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जो डिफेंडर्स हैं वो भी आपकी हेल्प के लिए हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आपका बॉल है तो आपको तो मुझे लग रहा है कि शाउट करके एकदम ब्रेव बन के जाना है बॉल के लिए कि कॉन्फिडेंस रखे। जो भी जब कॉर्नर लगने की सिचुएशन होती है मेरे दिमाग में एक ही बात होती है, बॉल को देखता हूँ मैं पहले, उसको रीड करता हूँ, देखता हूँ कि हाँ ये बॉल मेरा है या नहीं। लगने के बाद ही मेरा डिसीजन होता है मेन कि क्या करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन पहले होता है।
और लास्टली अमरिंदर, आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे यंग गोलकीपर्स को?
मैं यंग गोलकीपर के लिए यही बोलना चाहूंगा, कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर के लिए यही बोलना चाहूंगा कि पहले तो जितना भी ज्यादा ट्रेनिंग है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस रखिए, उसके बाद अपने डाइट के ऊपर। मुझे लग रहा है मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है वो ये नहीं होती कि हम लोग तो कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं हमें पता होता है कि ट्रेनिंग क्या चल रही है, क्या करना है, और हमें अपनी ड्यूटी पता होता है क्या करनी चाहिए। जो प्रोफेशनल हमारे 22 आवर्स होते हैं, 2 घंटे हमारे उधर ट्रेनिंग के, उसके बाद 22 घंटे, मुझे लग रहा है मेरे लिए और भी ज्यादा प्रोफेशनल है कि मैं वो 22 घंटे के लिए क्या करता हूँ। प्रोफेशनल कभी भी ये काउंट नहीं करता है कि आप 2 घंटे में क्या कर रहे हो, कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये काउंट करता है ज्यादा। मेरे लिए जो सबसे मेन बात है कि उसके बाद मेरे पास 22 घंटे है, कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, कब क्या खाना खाता हूँ, कब जिम करता हूँ, कब अपनी बॉडी को रेस्ट देता हूँ, कब पर जो मैं 22 घंटे में करता हूँ वो सबसे मेन चीजें हैं मेरे लिए। तो उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए सबको कि वो 22 घंटे कैसे निकाल रहे हैं, और अपनी डाइट को लेके ध्यान रखना चाहिए हर प्लेयर को, क्योंकि आगे जो फुटबॉल आ रहा है वो मुझे लग रहा है डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा एक डिपेंड रहता है कि आप कैसी डाइट लेते हो और कैसे ट्रेनिंग करते हो। हमेशा मुझे लग रहा है हार्ड वर्क करना चाहिए जो भी एक प्रोफेशनल लाइफ है हमारे पास बहुत टाइम होता है, हमें सोचना चाहिए अपने फुटबॉल के बारे में कि क्या चल रहा है, और डाइट के ऊपर यंग प्लेयर के लिए मैं यही एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपनी डाइट के ऊपर और जो आपके डाइजमेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, और जब भी आप ट्रेनिंग में जाते हो तो अपना बेस्ट देना है, हमेशा 110% देना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए लेजी या कुछ।
So that was Amrinder Singh with his insights on goalkeeping. I hope you enjoyed listening to it, and don't forget to tune in for the next edition of First Post Masterclass. Until then, stay safe and goodbye.